जय देवला पुस्तक सोलहवी लेक्चर नंबर 3 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम श्रुतात्मने नमो अरिहंतान् नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोहे सर्वसामूनं मुनिय परमर्थ विद्धर मुनिवर वीरेहि सिद्ध विज्जेहिं जासन्तु आभयवदी पसियौ सुयदेवया मर्चम् सुसुदेवयाय भक्ति सुदोजोगो अभावियो सम्मम् आवहैनान सिद्धिम् नानफलम् चाविनिर्वाणम् सुदेवयमिणमो तिक्वत्तोपणमियोणभक्ति गोच्छामि जहासुक्तम् चारित्तमोहसखवणविहिम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पौड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा इतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। सोलहवीं पुस्तक में वही 15वां चारित्र मोक्ष अपना का अर्थाधिकार चल रहा है और हम पृष्ठ संख्या 29 पर आ गए 29। अब यहाँ जो 10 नंबर की मूल गाथा पढ़ रहे हैं, उसमें ये 5वीं भाष्य गाथा चल रही है अपनी। देखो, 4 भाष्य गाथा में हमने क्या क्या देखा देख लेते हैं। ये 17 नंबर से भाष्य गाथाओं की बात चली थी, सूत्र सूत्र पढ़ लेते हैं। 3 घाती कर्मों के स्थिति बंधन अनुभाग बंद का यहाँ निर्देश हुआ है। क्रोध संज्वलन की जब प्रथम पृष्टि के संग्रह पृष्टि के अंतिम समयवर्ती वेदक उसके 3 घाती कर्मों का स्थितिबंध 10 वर्ष के अंदर अंदर हो जाता है, 10 वर्ष से भी कम। पहले संख्या 1000 वर्ष था, वो कम हो जाता है। और उसका अनुभाग बंध कैसे होता है, तो
3 घाती में मोनी को छोड़ने का,
हाँ मोनी को छोड़ने का, मोनी को छोड़ने का, मोनी को छोड़कर बाद। और 3 घाती कर्मों का अनुभाग बंध सर्वघाती है क्या देशघाती है, ऐसा पूछा था। तो कहते हैं कि जिनकी जिनकी अपवर्तना होती है, यानी जो देशघाती प्रकृतियां है जिनका क्षोभ हो सकता है, उनके तो देशघाती रूप से बंद होता है। इसी केवल ज्ञानावरण दर्शनावरण वगैरह जो है वो तो सर्वघाती रूप से बंद। अब दूसरी भाष्य गाथा 19 पेज पर 9वें गुणस्थान में अंतिम समयवर्ती बादर सांप्रायिक शपक, वो प्रथम संग्रह पृष्ठि का अंतिम समयवर्ती लिया था, ये डायरेक्ट अभी 9वें गुणस्थान का अंतिम समयवर्ती बादर सांप्रायिक शपक। नाम कर्म और गोत्र कर्म और वेदनीय, ये आघाती की बात है, एक वर्ष के अंतर्गत ने उससे कम बांधता है। और 3 घाती कर्मों का एक दिवस से भी कम बांधता है, एक दिवस से कम। इन्हें विशिष्ट हमने देखा ना, किसी का 8 मुहूर्त है, किसी का 12 मुहूर्त है, तो एक दिवस के अंदर है। अब आते आगे, उसको मुहूर्त पृथक कहा था 3 घाती कर्मों के लिए। हाँ, ये 10वें के अंत में अघाती भी बंधेगी, परंतु घाती तो यहाँ अंतिम समय है उसका बंधने का। घाती कर्मों का बंध यहाँ 10वें के अंतर, अघाती तो 10वें नहीं, 9वें के अंत की बात चल रही। और नहीं वो भी बंधेगी वहां पर अंतर मुहूर्त बंधेगी और बाकी मुहूर्त प्रमाण बंधेगी। फिर से अभी यहाँ नौगा का अंतिम समय है, यहाँ नाम गोत्र और वेदनी का कितना होता है, एक दिवस से कम होता है, और तीन घाती कर्मों का कितना हो रहा है, मुहूर्त पृथक्त्व प्रमाण, पृथक्त्व कुछ मुहूर्त प्रमाण हो रहा है। ये नवों का अंतिम समय है, इनका बंध कहाँ तक है, दसवें के अंतिम तक है, वहां और घटेगा आगे जाके। है ना, मोनी का बंध नहीं है, मोनी का उदय भी सूक्ष्म सांप्रदायिक रूप से होगा दसवें में, उसका बंध नहीं होगा, अन्य तीन का बंध भी है उदय भी है। अब तीसरे भाष्य गाता इसी 20 पेज पर नीचे, अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रदायिक यहाँ ले लिया, ऊपर था वो अंतिम समयवर्ती नौवा गुणस्थान या अंतिम समयवर्ती दसवा गुणस्थान, वह क्षपक जीव नाम कर्म गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म को एक दिवस के भीतर बांधता है, वहां एक वर्ष से कुछ कम बांधता था, नौवे के अंत में वर्ष से कम बांधता था या दिवस के अंदर, और घाती कर्म जो है ज्ञान और दर्शन अंतर उन्हें भिन्न मुहूर्त यानी अंतर मुहूर्त प्रमाण बांधता है। वो घाती का था, घाती का एक दिवस के अंतर था, और यहाँ अघाती का एक दिवस के अंदर हो गया है। उसी को मुहूर्त पृथक, हाँ उसी को मुहूर्त पृथक होता है, नहीं एक दिवस को नहीं, एक दिवस के कम, एक दिवस में भी कम है तो उसमें कुछ मुहूर्त संख्यात मुहूर्त कहेंगे ना, हाँ। और यहाँ पर आके अंतर मुहूर्त दसवें के अंत में अंतर मुहूर्त हो जाता है। नाम और गोत्र का तो हमने देखा था आठ मुहूर्त है, वेदनीय का बारह मुहूर्त, आगे के पेज पे लिखा है किस में नीचे, देखो नीचे का सूत्र, नाम और गोत्र का आठ मुहूर्त प्रमाण होता है, वेदनीय का बारह मुहूर्त है, तीन घाती कर्मों का अंतर मुहूर्त है, ये दसवें के अंत की पोजीशन। अब 22 पेज पर आते हैं, चौथी भाष्य गाता, तो यहाँ अनुभाग की बात है, सॉरी अनुभाग के वेदन की बात है, उदय की बात है, तो यहाँ उदय किस रूप से होता है, तो जो यहाँ ऐसा है ना देशघाती सर्वघाती जो है, केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण का उदय है वो तो सर्वघाती है और वैसा ही रहेगा, उसमें तो कुछ अंतर नहीं है, मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण तो देशघाती है, परंतु उसमें भी ऐसा उन्होंने घटित किया है कि कितना ज्ञान है, जितना ज्ञान का उहाड़ है उतना तो देशघाती रूप से, उसके आवरण तो देशघाती रूप से, और जितना नहीं जानते हैं उतना सर्वघाती रूप से। जैसे हम अपनी बात करेंगे, हम अभी तमिली नहीं जानते तमिल भाषा, तो तमिल भाषा संबंधी जो ज्ञानावरण है उसका हमारा सर्वघाती का उदय चल रहा है, और हम बाकी गुजराती मराठी हिंदी वगैरह जानते हैं तो देशघाती का उदय चल रहा है, यही उन्होंने विस्तार से यहाँ बताया था, उदय की बात ली थी वहां पर, उसमें सकल श्रुत के धारक और विकल श्रुत के धारक ऐसे दो भेद किए थे, सकल में तो 14 पूर्वी वाले लिए और विकल में 10 पूर्वी और 9 पूर्वी लिए, यानी एक अक्षर का भी ज्ञान कम हो, क्षोक्षम का उघाड़ कम हो तो उस संबंधी सर्वघाती का उदय, और जितना जितना जान रहे उतना देशघाती का उदय, इसकी तो चर्चा हो गई। अब पांचवी भाषा भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना यहाँ चलेगी 29 पेज पर, यहाँ से अपना आज का विषय शुरू होता है। एक तो पंचमी भाष्य गाहाय समुत्कीर्तना, इससे आगे पांचवी भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना करते हैं। अब ऐसो यहाँ तम जहां नहीं लिखा है, डायरेक्ट ये समुत्कीर्तना बता रहे हैं, 159 नंबर की जसणाम मुच्चबोधम वेदयदि नियमसाणन्त गुणम गुणहीनमन्तरायम् से काले से सगा भज्जा। यशस कीर्ति नाम कर्म और उच्च गोत्र कर्म का यह क्षपक प्रति समय नियम से अनंत गुण वृद्धि रूप से वेदन करता है। क्यों ऐसा कहा? प्रशस्त है ना, तो उसका अनुभव प्रति समय अनंत गुणा बढ़कर उसका उदय चल रहा है। वेदन की बात चल रही है। अंतराय कर्म को यह क्षपक प्रति समय अनंत गुण हानि रूप से वेदन करता है, क्योंकि ये तो अप्रशस्त प्रकृति है। तथा उक्त कर्मों से जो कर्म शेष बचे हैं उनको यह क्षपक प्रति समय भजनीय रूप से किस किस को लिया? नाम गोत्र और अंतराय लिया, बाकी ज्ञान आवरण दर्शन आवरण बचे ना, तो उसको कहते भजनीय रूप से। अर्थात छह वृद्धि छह हानि में से कोई एक वृद्धि और कोई एक हानि रूप से तथा अवस्थित रूप से वेदन करता है। यह पांचवी गाथा भी केव वेद। हाँ हाँ, वो छह है ना, अनंत भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि, वही वही संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि संख्या असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, ऐसे छह हानि। तो ये अविभाग प्रतिच्छेदों की वृद्धि हानि वहां चलती रहती। यह पांचवी गाथा भी केव वेद से इस प्रकार मूल गाथा सूत्र के अंतिम चरण का आश्रय करके अनुभाग संबंधी उदय विषयक यानी उदय के बारे में विशेषता का ही प्रतिपादन करने के लिए अवतीर्ण हुई। वहां क्या खासियत है उसकी? विशेष ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, वेदनीय है। मोहिनी के तो बता चुके थे ना, अनंत गुणा हानि रूप से उसकी तो चलती रहती है प्रति समय। ये तो अनुसमय अपवर्तन हुआ था उसका सत्ता में, और उदय में भी वो तो जैसे हीन होता है, वो तो विस्तार से बताया था पहले भी। अब यहाँ कहते अनुभाग संबंधी जो विशेषता है, तो शंकाकार पूछते वह किस प्रकार है? समाधान, क्योंकि जस नाम उच्च गोदम ऐसा कहने पर यशस कीर्ति नाम कर्म और उच्च गोत्र को प्रति समय वेदय अनुभव होता है। नियम सायणी निश्चय से ही अनंत गुण में अनंत गुण वृद्धि रूप से उक्त दोनों कर्मों के अनुभाग का वेदन करता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, ऐसा किस प्रकार है? क्योंकि शुभ प्रकृतियों की विशुद्धि के वृद्धि के कारण अनुभाग के उदय की यानी यहाँ विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ रही है, उसके कारण शुभ प्रकृतियों के अनुभाग के उदय की अनंत गुण वृद्धि को छोड़कर दूसरा प्रकार संभव नहीं है। किंतु ये यशस कीर्ति नाम कर्म यशस कीर्ति नाम कर्म वचन और उच्च गोत्र कर्म वचन देशामर्शक है। वचन इन ये शब्द यहाँ जो दो नाम लिए कौन से? यशस कीर्ति और उच्च गोत्र। इसलिए जितनी परिणाम प्रत्यय रूप शुभ प्रकृतियां हैं उन सबके ही अनुभाग का उदय इस क्षपक के प्रति समय अनंत गुण वृद्धि रूप से प्रवृत्त होता है, ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिए। ये परिणाम प्रत्यय क्या होता है? हाँ अश्विन भाई, प्रत्यय ने कारण, तो परिणाम प्रत्यय किसको कहना और वो किस में लग रहा है? जीव के परिणामों के कारण जिन प्रकृतियों के अनुभाग में फर्क पड़ता है उदय रूप होने में, परिणाम के कारण तो उसको परिणाम प्रत्यय वाली प्रकृतियां कहेंगे। सभी प्रकृतियों का अनुभव तो चेंज नहीं होगा, ख्याल में आती है? कुछ प्रकृतियों का अनुभव घटकर या बढ़कर उदय में आता है, तो परिणामों के कारण जिनमें ऐसा फर्क पड़ता है, ऐसी जो शुभ प्रकृतियां हैं उनमें अनंत गुण वृद्धि होती है, ये बात यहां बता रहे हैं। अब आगे बताए, जो परिणाम प्रत्यय स्वरूप असाता वेदनी और अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियां, अभी नाम और गोत्र की जो बात की उन्होंने यशस्व की, वो शुभ प्रकृतियां थी, दो का नाम लिया, जो जो शुभ प्रकृतियां परिणाम प्रत्यय स्वरूप है उनका अनुभव अनंत गुना बढ़कर वृद्धि होकर उदय में आता है। अब यहां बताते हैं जो जो परिणाम प्रत्यय रूप ये जो अशुभ प्रकृतियां हैं, तो असाता वेदनी और अस्थिर आदि आदि लिख दिया, अशुभ प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों के अनुभाग का उदय इस स्थान में अनंत गुणहानि रूप से प्रवृत्त होता है। इस प्रकार यह अर्थ भी यहाँ पर उक्त भाष्य गाथा सूत्र से सूचित हुआ जानना चाहिए। वेदनी अस्थिर आदि लिए उन्होंने परिणाम प्रत्यय, एक्चुअली पूर्व में हमने उसमें भी परिणाम प्रत्यय वाली होती है और कुछ है तो दूसरी होती है। पहले हमने एक लिस्ट पढ़ी थी परिणाम प्रत्यय वालों की, शायद फिर दोबारा, ये तो शुभ है ना, हाँ वो बताए ना उन्होंने, जो जो है वो सब लेना, दो का नाम बताया आदि में सब ले लेना। तो यहाँ परिणाम प्रत्यय में वहां तो यशस कीर्ति लिया, यहाँ अयशस कीर्ति और निज गोत्र लेना कि नहीं लेना, उसका उदय ही नहीं है ना, इसलिए उदय रूप प्रकृतियां लिया, जो उदय रूप प्रकृतियां हैं उसका नाम लिया। अब साता असाता में दोनों का ही उदय हो सकता है, सिर अस्थिर भी दोनों का भी उदय होता है, इसलिए यहाँ उसको भी लिया, अप्रशस्त में भी लिया।
क्या
उदय रूप अशुभ भी है, अस्थिर भी अशुभ भी है,
अस्थिर अशुभ दुष्वर
उपघात भी होगा क्या? नहीं, देखो अभी हम आगे बढ़ेंगे,
उपघात
लिया आपने, वो तंत्री निकाली आपकी, चलो अच्छा है। हम कोई गलत नहीं होते ना, अच्छा है ना, आप देख लेते तो। हाँ देखो, गुणहीन मंत्रायम ऐसा कहने पर पांच अंतराय प्रकृतियों के अनुभाग को यह क्षपक प्रति समय अनंत गुणहानि रूप से वेदता है, यह इस भाष्य गाथा सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है। फिर शंका, इस जीव के अंतराय कर्म का अनंत गुणहीन रूप से अनुभव करने का नियम किस कारण है? उसका समाधान, नहीं क्योंकि अंतराय कर्म शुभ परिणाम के विरुद्ध स्वभाव वाला होता है, इसलिए क्षपक के पांच अंतराय कर्म के अनुभाग का इस स्थान में अनंत गुणहानि को छोड़कर दूसरा प्रकार संभव नहीं उपलब्ध होता। केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण प्रकृतियों का भी यहीं पर पांच अंतराय कर्मों के साथ संग्रह करना चाहिए, क्योंकि यह भाष्य गाथा सूत्र देशामर्शक है, इसलिए इन दो प्रकृतियों के अनुभाग को भी यह क्षपक नियम से अनंत गुणहीन रूप से वेदन करता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। ये ज्ञानावरण को भी ले लिया इसमें, केवल ज्ञानावरण वगैरह, वो कितना भी कम क्यों नहीं, वो तो है तो सर्वघाती, फिर भी अनंत गुणहानि अनंत गुणहानि रूप से उदय चलता है। से काले शेषगा भज्ज ऐसा कहने पर पूर्व में कहे गए कर्मों से शेष रहे कर्म प्रति समय अनंत गुणहीन अनुगुणक के उदय की अपेक्षा भजनीय होते हैं। यह इस भाष्यगाथा सूत्र के उक्त वचन का अर्थ के साथ संबंध है। शंका, ऐसा किस कारण है? उसका समाधान, क्योंकि उन कर्मों के इस स्थान में छह वृद्धि छह हानि और अवस्थित रूप से अनुभाग के उदय की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो देखी बराबर करना, देखी जाती है। इसलिए यथासंभव यहाँ वेदी जाने वाली चार प्रकार की ज्ञानावरणी, केवल ज्ञानावरण को छोड़कर तीन प्रकार की दर्शनावरणी, कौन सी तीन है? हाँ तेज, हाँ चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शनावरण और भव के संबंध से उपग्रहित नाम कर्म प्रकृतियों का इस क्षपक के ये उदय की बात चल रही है। भव के संबंध से उपग्रहित नाम कर्म प्रकृतियों का इस क्षपक के छह वृद्धि छह हानि और अवस्थित स्वरूप से अनुभाग का उदय जानना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर इस भाष्य गाथा सूत्र का अर्थ के साथ यह संबंध जानना चाहिए। अब इसी भाष्य गाथा सूत्र को स्पष्ट करने के लिए आगे विभाषा ग्रंथ को आरंभ करते हैं। जो पढ़ा उसी को और समझाएंगे एक्स्ट्रा। विहासा, अब वो दिख रहा है क्या? इस भाष्य गाथा सूत्र की विभाषा कहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जस नाम उच्चा गोदम च अनंत गुणाए सेढ़िये वेदयदि। यह क्षपक यशस्कीर्ति और नाम यशस्कीर्ति नाम कर्म को तथा उच्च गोत्र कर्म को अनंत गुणी श्रेणी रूप से वेदता है। श्रेणी ने प्रति समय अनंत गुणा अनंत गुणा, इस तरह से उसका उदय चलता है। क्योंकि परिणाम प्रत्यय वाली शो प्रकृतियों के अनुभाग के उदय का क्षपक श्रेणी में अनंत गुण वृद्धि को छोड़कर अन्य प्रकार से उदय होना संभव नहीं है। यह जीव सातावेदनीय प्रकृति को भी अनंत गुण वृद्धि रूप से वेदता है। उसका नाम नहीं लिया परंतु भी कहकर वो बता दिया। इस प्रकार इस अर्थ का भी यहीं पर उक्त भाषा गाथा सूत्र के द्वारा सूचित हुए रूप से व्याख्यान करना चाहिए। क्योंकि यह प्रकृति भी परिणाम प्रत्यय शुभ प्रकृति है। इस अपेक्षा उक्त प्रकृतियों से इस प्रकृतियों में कोई भेद नहीं है। अब इसी भाष्य गाथा सूत्र में लीन अन्य अर्थ विशेष की भी विशेष व्याख्या करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। ये प्रकृतियाँ कुछ परिणाम प्रत्यय होती है और कुछ नहीं होती। जो परिणाम प्रत्यय है उसमें जीव के विशुद्धि से उसमें अनुभाग वो शुभ होगी तो बढ़ेगा, अशुभ होगी तो घटेगा। घट उदय में आने की अपेक्षा की बात चल रही है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल,
तो चाहते हो तो अपेक्षा यहाँ पे समानता होती है सभी जीव की अनिमुक्ति प्रवेश।
ये आपस में समानता है, प्रति समय समानता नहीं है। ये प्रति समय की बात चल रही है। एक समय से दूसरे समय में अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना बढ़ रही है, सभी जीवों का बढ़ रहा है, उसमें क्या है? शेषाव नामाव कदम वेद यदि। नाम कर्म की शेष प्रकृतियों को किस प्रकार वेदता है? ऊपर प्रश्न चिन्ह करो प्राकृत में। कदम वेद यदि यानी किस प्रकार से वेदता है? यशस्वी कीर्ति को छोड़कर शुभ और अशुभ भेद से वेद को प्राप्त हुई नाम कर्म की शेष प्रकृतियों को यह क्षपक जीव कैसे वेदता है? क्या अनंत गुण वृद्धि रूप से वेदता है या अनंत गुण हानि रूप से वेदता है या अन्य प्रकार से वेदता है, यह पूछा गया है। ये पूछा गया है कि बात प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए। यहाँ बताते जस नाम परिणाम पच्चयम मनुष्य तिरिक्ख जोनियाणम, मनुष्य जीवों के और तिरियंच योनि वाले जीवों के यशस कीर्ति नाम कर्म की प्रकृति परिणाम प्रत्यय वाली होती है।
अच्छा, योनि वाले
तिरियंच योनि यानी तिरियंच जीव, योनि मति की बात नहीं, तिरियंच जीवों की बात। इस वचन द्वारा यशस कीर्ति नाम कर्म के उदय द्वारा जितनी परिणाम प्रत्यय वाली शुभ प्रकृतियां सूचित की गई है, मनुष्य और तीन इंचों में घटित कर रहे
हैं।
ये तो परिणाम प्रत्यय वाली कौन कौन सी है उसकी बात चल रही, परिणाम प्रत्यय वाली प्रकृतियां कौन सी है उसकी बात चल रही। देखो इस वचन द्वारा यश कीर्ति नाम कर्म के उदय द्वारा ये बताया, तो यह यशस कीर्ति एक नाम लिया, तो कहते जितनी परिणाम प्रत्यय वाली शुभ प्रकृतियां सूचित की गई है उन सब को, ये परिणाम प्रत्यय वाली कौन सी होती इतना ही बताया, मनुष्य और तिरियंचों में ये परिणाम प्रत्यय वाली है इतना बताया। अब अपना जो विषय चल रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि जो परिणाम प्रत्यय वाली शुभ प्रकृतियां सूचित की गई है उन सब को प्रति समय अनंत गुणी श्रेणी रूप से वेदता है, इसलिए मनुष्य और तिरिंच योनि वाले जीवों के यश कीर्ति से लेकर परिणाम प्रत्यय वाली सभी शुभ प्रकृतियों की इस क्षपक के अनुभाग के उदय की वृद्धि देखी जाती है, वो देखी करना बराबर। इसलिए निर्दिष्ट ने बताया हुआ देशामर्शक भूत भाष्य गाथा सूत्र द्वारा निर्दिष्ट, देशामर्शक ने एक का नाम लिया है तो कहते हैं वो जिसमें जिसमें लागू होगा, जो जो परिणाम प्रत्यय वाले प्रकृतियां हैं उन सब में ये बात लागू होगी। तो जो भाष्य गाथा में बताया हुआ इसी यश कीर्ति के उदय से यह अर्थ विशेष भी सूचित किया जानना चाहिए। कौन सा अर्थ विशेष? कि अन्य भी जो जो परिणाम प्रत्यय वाली शुभ प्रकृतियां हैं उनका भी अनंत गुणा वृद्धि होकर अनुभाग का उदय होता है। तात्पर्य यह है कि परिणाम प्रत्यय जितनी शुभ और आदेय शुभ नाम कर्म संबंधी प्रकृतियां हैं उन सब को अनंत गुणी श्रेणी रूप से यह क्षपक वेदता है, क्योंकि उनमें शुभ प्रकृतिपना होने पर परिणाम प्रत्ययपने के प्रति यश कीर्ति से इनमें कोई भेद नहीं पाया जाता। यहां इस यश कीर्ति के उदय द्वारा केवल शुभ प्रकृतियों के उदय को अनंत गुण वृद्धि रूप से ही सूचित नहीं किया गया है, परंतु परिणाम प्रत्यय नाम कर्म की अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग का उदय इस क्षपक के अनंत गुण हानि रूप से प्रवृत्त होता है, यह यशस कीर्ति वचन द्वारा सूचित किया गया है। इस प्रकार इसी बात का ज्ञान कराने के लिए यह कहते हैं, यानी वहां नाम तो एक यशस कीर्ति का लिया परंतु उस शुभ प्रकृति है, और उसी से यह भी सूचित किया गया कि जो परिणाम प्रत्यय वाली अशुभ है वो अनंत गुणाहीन होकर उदय में आती अनुभाग में। सूत्र में यही बात दोबारा रिपीट करें, अभी यहाँ पर 33 पेज पर आया, जाओ अशुभाओ परिणाम पच्चय गाओ ताओ अनंत गुणहीनाए सेढ़िए वेद यदि ती, जो अशुभ परिणाम प्रत्यय प्रकृतियां हैं उन्हें यह क्षपक प्रति समय अनंत गुण हानि श्रेणी रूप से वेदता है। यह सूत्र गतार्थ है, इतनी विशेषता है। इस सूत्र में अशुभ नाम कर्म संबंधी प्रकृतियां ऐसा कहने पर अस्थिर अशुभ आदि प्रकृतियों का यथासंभव संग्रह करना चाहिए। अब उक्त भाष्य गाथा के उत्तरार्ध का कथन करने के लिए यह सूत्र कहते हैं। अंतरायम सवम अनंत गुणहीनम वेदयति। अंतराय संबंधी सब प्रकृतियों को, कितनी अंतराय की तेजल?
पांच।
हाँ, अनंत गुणहीन रूप से वेदता है, क्योंकि पांच अंतराय कर्म संबंधी प्रकृतियों का अनुभव शुभ परिणामों के विरुद्ध स्वभाव वाला है। ये घाती वाले हैं ना, तो विरुद्ध स्वभाव वाला है, इसलिए क्षपक श्रेणी संबंधी विशुद्धियों के द्वारा उसके अनंत गुण हानि रूप से उदय रूप परिणाम के होने में बाधा नहीं पाई जाती। अब किसमें किसमें भजनीय वगैरह वो बताएंगे। भवो पग दहियाओ नामाओ छव विहाय वट्टी है छव विहाय हानि है भज दौवाओ। भव के द्वारा उपग्रहित नाम कर्म की प्रकृतियां छह प्रकार की वृद्धि द्वारा और छह प्रकार की हानि द्वारा भजनीय होती है। इस सूत्र में भवोपगहियाओ नामाओ ऐसा कहने पर भव प्रत्यय मनुष्य गति आदि नाम कर्म की प्रकृतियों का यथासंभव ग्रहण करना चाहिए। गति गत्यानुपूर्वी वगैरह वो गति संबंधी है ना प्रकृति। हाँ, यहाँ पर ये भव प्रत्यय प्रकृतियां हैं और ये परिणाम प्रत्यय प्रकृतियां हैं। यह अर्थ विशेष सत्कर्म प्रावृत में विस्तार के साथ कहा गया है। इन्हें कौन सी भव प्रत्यय और कौन सी परिणाम प्रत्यय है ये तो बताया गया है, आगम के आधार से हम कह सकते हैं उसमें, परंतु यहाँ पर ग्रंथ के बढ़ जाने के भय से नहीं कहा गया है, इसलिए उसमें कही गई सब प्ररूपणा को यहाँ पर कहकर ग्रहण कर लेनी चाहिए। उनके अनुभाव को यह क्षपक जीव वेदन करता हुआ छह प्रकार की वृद्धि छह प्रकार की हानि और अवस्थित रूप से वेदन करता है, यह इस सूत्र का अर्थ है। मेरे ख्याल से महाबंध में ये बात आएगी। हमने एक बार पढ़ा था भव प्रत्यय की बात, परिणाम प्रत्यय की बात हमने देखी थी कहीं, मैंने थोड़ी प्रकृतियों को बताया था परिणाम प्रत्यय वाली होती है, पूरा विषय इतना नहीं हुआ है, शायद महाबंध में आएगी। सत्कर्म प्रावृत्ति यानी कौन सा होगा? सत प्ररूपणा वो तो दीवकांड वाली हो गई, कर्म की भोग वो देखो देखो भोग विपाकी हुई है कि वही भव प्रत्यय होती है, भव विपाकी हुई अपनी। हाँ, ये भव प्रत्यय वाली है। इन्हें ऐसे ना उस भव में उनका उदय होगा ही, विशुद्धि के कारण तो वो नहीं चेंज होगी, मनुष्य गति का उदय हो रहा है। यहाँ बताए ना मनुष्य गति आदि जो है मनुष्य गति का उदय है, तो उसमें क्या है, विशुद्धि के कारण वो थोड़ा ही बढ़ने वाला है। उसमें तो हानि वृद्धि जो अगुण लघु तो उनके कारण होती है, रेगुलर सभी में चलती है, वैसे उसमें भी होगी। विशुद्धि के कारण उसमें بڑھ رہی ہے ایسا کچھ نہیں. شنکا, ان بھو پرتیہ پرکرتیوں کے انوبھاگ کا چھ پرکار کی وردھی چھ پرکار کی ہانی اور اوستھت روپ سے ادے کس کارن سے سمبھو ہے, یعنی اس میں اتنا ویریشن کیوں ہو رہا ہے؟ سمادھان, نہیں, کیونکہ بھو پرتیہ پنے کے کارن وشدھی اور سنکلیش سے نرپیکش ان پرکرتیوں کے وشیش پرتیہ کا آشرے کر کے اس پرکار کے بھاو کی سدھی میں ویرودھ کا ابھاؤ ہے. یعنی وہ وشدھی کے کارن اس کا انوبھاؤ بڑھے یا کم ہو جائے ایسی کچھ بات نہیں, یہ بات بتانا چاہتے. ہاں, پرینام پرتیہ نے جہاں وشدھی بڑھتی ہے وہاں جن کے انوبھاگ ادے میں چینج ہوتا ہے اس کو ہم پرینام پرتیہ کہیں گے. اور یہ بھو پرتیہ نے بہت سمبندھی جو کچھ پرکرتیاں ہیں کہ جن کے انوبھاگ ادے میں کوئی ویریشن نہیں ہوگا, جیسے یتھا یوگی ادے ہونا ہے ویسے ہی ہوگا اس کا. اب کہتے کیول نانا ورنیم کیول دنسنا ورنیم چ انت گنہینم ویدیدی, دو ہی لیے اس میں سے, باقی چار اور اس کے درشنارن کے تین کو نہیں لیا ہے. کیول گیانارن کیول درشنارن کو انت گنہین روپ سے ویدتا ہے کیونکہ شبھ پرینام ہونے کے کارن ان پرکرتیوں کے انوبھاگ کے ادے کا انت گنہانی روپ سے نیم دیکھا جاتا ہے. اب کہتے اد دیسگادیم ویدیدی, نہیں, شیشم چوبیم نانا ورنیم جدی سوگادیم ویدیدی نیم انت گنہینم ویدیدی, شیش چار پرکار کے گیانا ورنی کو یدی سروگاتی روپ سے ویدن کرتا ہے تو نیم سے انت گنہین روپ سے ویدن کرتا ہے. ہم نے تو ایسا دیکھا تھا نا, متی گیانا ورنی نے تو دیشگاتی کا ادے, پرنتو متی گیانا ورن کے بھوئے دو اسنکھیات لوک پرمان ہے تو متی گیان یا شدھ گیان میں جتنا وہ نہیں جان رہے جس کو ہم ادے کا گیان کہتے ہیں اس کا گیانورن کا سروگاتی کا ادے چل رہا ہے, پھر بھی وہ ہے تو سروگاتی روپ سے ہی انت گناہین ہو کر ادے میں آئے. جیسے کل بات کی تھی کوئی چودہ پوروی پورا سب جانتے ہیں اور کوئی دس پوروی ہے تو اس کے چار پوروں کا گیان نہیں ہے تو وہ سروگاتی کا ادے اور اس میں انت گناہین والی بات ادے روپ ہوگی. اب کہتے ہیں ادھر دیس گھادی میرے دھادی ہوا ہے کیا گھادی گھو کرنا اس کا ادھر دیس گھادی میرے یدی ایتھ چھوہائے وڈیے چھوہائے آنیے بجدو. اب یدی دیس گھاتی روپ سے ویدن کرتا ہے तो इस विषय में छह प्रकार की वृद्धि और छह प्रकार की हानि की अपेक्षा भजनीय है. ये यहाँ भजनीय ने पॉसिबिलिटीज बता दी, यानी उसके अविभाग प्रतिच्छेदों में वृद्धि हानि संभव है यहाँ पर. एवं चेव दंसनावरणीय जम सवघादि वेदे यदि तम नियम अनंत गुणहीन, इसी प्रकार दर्शनावरणी का यदि सर्वघाती रूप से वेदन करता है तो नियम से अनंत गुणहीन रूप से वेदन करता है. जम देशघादिम वेदयदिम तम सव्यसाय छव्यहाय वट्टीये छव्यहाय हानिये भजियव, वैसे जो ज्ञानावरण के बारे में वही दर्शनावरण के बारे में कथन आता है. यदि देशघाती रूप से वेदन करता है तो नियम से छह प्रकार की वृद्धि और छह प्रकार की हानि की अपेक्षा भजनीय है. अब इन सूत्रों का अर्थ कहते हैं, यानी और भी इसको भी एक्सप्लेन करेंगे. यथा लब्धि रूप कर्मों का, यानी क्षोभम रूप कर्मों का, इसको लब्धि कहते हैं. आपने सुना अंतराय कर्म के जो है ना, वीर्यांतराय है, दानांतराय, लाभांतराय वगैरह, तो उसमें भी जो प्रकट रूप उघार रूप अवस्था है उसको भी लब्धि कहते हैं. ये लब्धि शब्द क्षोभम के लिए आता है. तो लब्धि रूप कर्मों का उक्त ज्ञानावरण और दर्शनारूप वरण रूप कर्मों में नियम से देशघाती और सर्वघाती रूप होने के कारण देशघाती और सर्वघाती रूप पुंज का उदय संभव होने पर वहां इन कर्मों के सर्वघाती अनुभाग का वेदन करता हुआ यह जीव नियम से अनंत गुणहीन अनुभाग का विधन करते हैं, हमने देखा था। ये अभी अपनी बात करेंगे, अपना मति ज्ञान श्रुति ज्ञान चल रहा है, तो जितना हम जान रहे हैं उन संबंधी कर्मों का देशघाती का उदय हो रहा है, और जो जो हम नहीं जान रहे हैं उसका हमारे सर्वघाती का उदय चल रहा है। उनके तो जो सर्वघाती का उदय है जितना वो नहीं जान रहे, परंतु वो कैसा हो रहा है, अनंत गुणाहीन हीन होकर है, तो सर्वघाती परंतु पूर्व समय से दूसरे समय में अनंत गुणाहीन रूप पर अनुभाग का उदय चलेगा, क्योंकि सर्वघाती अनुभाग की अनंत गुणी विशुद्धि के कारण उस प्रकार के परिणाम की सिद्धि निर्बाध 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 रूप से उपलब्ध होती है। परंतु इन कर्मों का देशघाती रूप अनुभाग का उदय अंतरंग कारणों की विचित्रता वश छह वृद्धि छह अनिवार अवस्थित रूप से प्रवृत्त होता है, क्योंकि उन कर्मों के विषय में अन्य प्रकार संभव नहीं है। इस प्रकार इन पांच भाष्य गाथाओं द्वारा मूल सूत्र गाथा के पूर्वार्ध की विशेष व्याख्या की, यानी पूर्वार्ध में ये पांच भाष्य गाथा बताई। अब शंका मेदीय के केसु असंकामगो होती, इस प्रकार इस मूल गाथा सूत्र के पश्चिमार्ध द्वारा पृष्ठी विषयक अनुपूर्वी संक्रम का निर्देश किया गया है। किसमें किसमें संक्रमित होता है, पहले तो कोई भी उल्टा पुल्टा चल रहा था, पृष्ठि वेदक या पृष्ठि कारक में तो पृष्ठि विषयक अनुपूर्वी बताया, किंतु उसका पहले ही विशेष व्याख्यान कर आए है, इसलिए यहाँ उसका पुनः विशेष व्याख्यान नहीं करते हैं, अथवा इस पद द्वारा क्षपित कर्मों को और अक्षपित कर्मों को ग्रहण करना चाहिए। यानी जिसका क्षपणा हो गई है उसके तो संक्रमण होने का सवाल नहीं है, तो किस किस का चल रहा है वो बात यहाँ बताएंगे। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा दसवीं मूल गाथा के अर्थ की विभाषा समाप्त करके अब प्रकृत अर्थ का उपसंहार करते हुए यह सूत्र कहते हैं, एवं ऐसा दससी मूल गाहा किट्टीसु विहासिदा समत्ता। इस प्रकार यह दसवीं मूल गाथा पृष्ठियों के विषय में विशेष व्याख्यान होकर समाप्त हुई। एत्तो एक्का रसमी मूल गाहा, इससे आगे ग्यारहवीं मूल गाथा है। ये दससी बराबर है क्या, 35 दससी शब्द आया है। जरा देख लेते हैं, 35 पेज है ना, 199 नंबर, 9 नंबर दसमी मूल गाथा, क्योंकि एक का रसमी आया ना तो ऊपर दसमी चाहिए। करेक्शन था क्या पीछे,
नहीं नहीं।
199 पेज, जहाँ वो परिशिष्ट लिखा है ना, दूसरी लाइन एवं ऐसा दसमी मूल का है, क्योंकि दससी का कुछ अर्थ भाषित नहीं होता है ना, अब आगे बढ़ेंगे हम। اس سے آگے گیارہویں مول گاتا کیا پیاد ہوا ہے نا سمپی پیاد مت وہ تو مول گاتھا میں گڑبڑی ہے. اب آگے بڑھتے 36 پیج پر آئے ہم دسویں مول گاتھا کا وشیش ویاخیان کرنے کے انتر آگے یتھا اوسر پراپت گیارہویں مول گاتھا کی وبھاشا کرنی چاہیے یہ اکت کتھن کا تاتپریہ ہے. دسمم مول گاہا وہاس وہاسا کے لیے دسمم کہا اس میں کچھ کریکشن ہے وہ تو اس کا مول سوتر نہیں ہے کہ سوتر ہے نہیں وہ نہیں ہوگی پیچھے وہ تو بیچ کا ایکسپلینیشن ہے وہ سوتر نہیں ہے. دسویں مول گاتھا کا یہ ہو گیا ابھی یہ وبھاشا بھی یہاں کریں گے ابھی اس کے لیے یہاں پہلے میں پہلے مول گاتھا بتا رہے گیارہویں مول گاتھا किट्टि कदम्यकम् मे के विचारो दुमोहनीयस् शेषाणम् कम्माणम् तहेव केके दुविचारो. इसका अर्थ देखते हैं ऊपर ब्रैकेट नहीं किया 160 अकृष्टि स्वरूप संज्वलन कर्मों के कृष्टि स्वरूप किए जाने पर किट्टी कदम ये ना यानी इन कर्मों को कृष्टि स्वरूप परिणम आया कितने मोहनीय कर्म के स्थितिघात आदि रूप कितने कितने क्रियाभेद होते हैं तथा इसी प्रकार शेष कर्मों के स्थितिघात आदि रूप कितने कितने क्रियाभेद होते हैं विचारों पूछा ना کیا کیا ویچار انہیں پلٹنا کیا کیا ہوتا ہے یہ پرشن چنہ کیونکہ گاتھا پرچھاتمک ہے. یہ گیارہویں مول گاتھا پرشٹی ویدک روپ اوستھا میں ودیمان کشپک جیو کے سنجولن مونی کے اور گیانا ونادی شیش کرموں کے ستیگھات آدی روپ اتنے کریابید آدی ہوتے ہیں اس بات کا گیان کرانے کے لیے آئی ہے. اب اس مول گاتھا کے پرتیک پد کے ارتھ کی پرروپنا کریں گے. یتھا پہلے چار سنجولنوں کے اکرشٹی سوروپ انوبھاگ ستکرم کے پورا کرشٹی سوروپ سے پرینما دینے پر اس اوستھا کے پرتھم سمے میں کرشٹیوں کے ویدک روپ سے ودیمان ایک شپک کے کیا کہا پہلے کرشٹی روپ بنایا اب کرشٹی کا ویدن چلے گا یعنی کروت کی پرتھم سنگرہ کرشٹی کا ویدک ہوگا. اس سمے اس کشپک کے ویچارا دو موہنی کرم کے ستیگھات آدی لکشن والے نیم سے کتنے کریابید ہوتے ہیں تتھا سیسانم و کمانم گیانا ورنادی شیش کرموں کے تہے وینے اسی پرکار سے پرتیک کے دیکھے گئے کے دو ویچارا कितने कितने क्रियाभेद संभव है इस प्रकार यह यहाँ पर इस मूल गाथा सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है. क्रियाभेद यानी यहाँ क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं सिद्धिकांड घात वगैरह वगैरह इस मूल गाथा में यही पढ़ रहे थे ना. विचार ऐसा कहने पर स्थितिघात आदि क्रियाभेदों का ग्रहण करना चाहिए. बताए क्या क्या होता है यहाँ पर स्थितिकांडघात वगैरह जो कुछ होता है. अब इस मूल सूत्र गाथा के अर्थ का विशेष व्याख्यान करते हुए आगे के प्रबंध को आरंभ करते हैं. ये तो एदिस से भाष्य गाथा न थी पहली बार हुआ कि मूल गाथा में भाष्य गाथा नहीं है. इस मूल गाथा सूत्र की भाष्य गाथा नहीं है। शंका, इस मूल गाथा की शेष मूल गाथाओं के समान गाथा सूत्रकार ने भाष्य गाथा क्यों नहीं पठित की, उसका समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह मूल गाथा सुगम अर्थ की प्ररूपना से संबंध रखती है। कारण कि इस मूल गाथा की भाष्य गाथा नहीं होने पर भी उसके अर्थ का ज्ञान करना शक्य है। इस प्रकार इस अभिप्राय से इस मूल गाथा की भाष्य गाथा उपदिष्ट नहीं की, इसलिए मूल गाथा के अनुसार ही इसका व्याख्यान करेंगे, ऐसा कथन करते हुए इस विभाषा सूत्र को कहते हैं। ये डायरेक्ट इसकी विभाषा हुई। पहले हमने भाष्य गाथा देखी, फिर एक एक की विभाषा देखी। यहाँ कहते विभाषा, अब इस मूल गाथा की विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है। ऐसा गाहा पुच्छा सूत्रम, यह मूल गाथा पुच्छा सूत्र है, यानी प्रश्नात्मक है। यह सूत्र सुगम है, यहाँ यह पूछते हैं कि संज्वलन मोहनीय कर्म की पृष्ठियों में कितने क्रियाभेद होते हैं। अभी ये जो संज्वलन चार जो है उनकी जो पृष्ठि की है तो उनमें कौन कौन से क्रियाभेद होते हैं, तथा शेष कर्मों में भी कितने क्रियाभेद होते हैं। इस प्रकार इस पृच्छा का निर्देश इस गाथा सूत्र से संबंध रखता है। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा इस बात का ज्ञान कराया गया। अब इस प्रकार इस मूल गाथा द्वारा पूछे गए अर्थ के विषय में निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यहाँ तो प्रश्न पूछा गया, अभी उसका जवाब भी देंगे वो स्वयं सूत्र के रूप में। तदो मोहनीयस्य पूर्व भणितम्, मोहनी कर्म के स्थितिघात आदि क्रिया भेद वो बहुत दिख रहा है के बराबर पहले ही कहे आए हैं। संज्वलन मोहनी कर्म के संबंध से स्थितिघात अनुभागघात स्थिति सत्कर्म उदय और उदीर्णा आदि भेद पहले ही विस्तार के साथ कहे आए हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अभी ये पृष्टि वेदक की बात है, क्रोध की प्रथम संग्रह पृष्टि का वेदक। उस समय तो अनुभाग कांडघात वगैरह हो रहे थे ना, बाद में अनुसमय अपवर्तन कब से शुरू हुआ, तभी से हुआ था ना। अच्छा, उन्होंने कांडघात नहीं अनुभागघात इतना ही बताया, अनुभागघात इतना ही बताया। वो कांडक में होता है कि प्रति समय होता है, उसकी चर्चा नहीं की। तदो भी पुनः इमी से गहाय फस्स कर्ण करणम अनुसंवन्नेयम, इसलिए फिर भी इस मूल गाथा सूत्र का स्पर्श कर्ण करण अर्थात स्पर्श करके कुछ आगमानुसार वर्णन कर लेना चाहिए। स्पर्श कर्ण करण, ये कर्ण ने वो कान वाला अश्व कर्ण के समान नहीं है, स्पर्श करना चाहिए नहीं, उससे संबंधित फिर दोबारा बात करनी चाहिए। यद्यपि संज्वलन मोहनीय के विषय में स्थिति सत्कर्म के प्रमाण का अनुगम आदि भेद पहले कहे आए हैं, तो भी इस मूल गाथा सूत्र के इस मूल सूत्र गाथा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर आगमानुसार संक्षेप से कुछ प्ररूपण करेंगे, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब किसे किसे प्ररूपण करेंगे, तो कहते हैं ऊपर ठिदि घादेन ठिदि संत कम्मेन उदयेन उदीर्णाये ठिदि खंडगेन अनुभाग घादेन ठिदि संत कम्मेन अनुभाग संत कम्मेन बंधेन और बंध परिहानिये। स्थिति सत्त कम्मेन ठिदि खंडगेन ठिदि संत कम्मेन ठिदि संत कम्मेन, दो बार है तो खरा। वह प्ररूपणा स्थिति घात स्थिति सत्कर्म स्थिति बंध कहाँ लिया है, बंध आगे लिखा है, नहीं 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 मगर बंध केवल बंध लिखा है, स्थिति घात स्थिति सत्कर्म उदय उदीर्णा स्थिति कांडक अनुभाग कांडक स्थिति सत्कर्म अनुभाग सत्कर्म बंध और बंध परिहानि इनके द्वारा करेंगे। ऊपर मूल प्राकृत में भी दो बार लिया ठिदि संत कम्मेन और स्थिति संत कम्मेन, ठिदि को डबल ठ किया और यहाँ सिंगल ठ किया, पीछे वही है कि सूत्र भी देख लिए क्या? कितना पेज अपना 38 ठीदी अनिठीदी, ये डबल ठ लिखने में क्या फर्क पड़ता है, चलो पढ़ेंगे तो क्या लाएगा, इन्हें ये 10 बताए हैं इसके द्वारा करेंगे।
यहाँ पे भी दो बार लिया है 19
वही तो कह रही हूँ मैं। देखो अब मोनी विषय के इन 10 क्रिया भेदों के किंचित अर्थ की प्ररूपणा करेंगे। यथा ठिदि घादे ने इस पद द्वारा ऐसा कहने पर यह पहला क्रिया भेद अंतर्मूर्त प्रमाण काल के द्वारा एक स्थिति कांडक घात के काल की अपेक्षा कहा गया है, क्योंकि जिस काल के द्वारा स्थिति घाती जाती है वह स्थिति घात कहलाता है, काल को स्थिति घात कहा। को लिखो ना अंतर्मूल प्रमाण काल के द्वारा एक स्थिति कांडक घात के काल की अपेक्षा ये बात बताई। ठिदि संत कम्मेन ठिदि सत्कर्म यह दूसरा क्रियाभेद है जो स्थिति सत्कर्म के प्रमाण के अवधारण करने से संबंध रखता है। उदयन उदय यह तीसरा क्रियाभेद है जो प्रति समय उदय कैसा है प्रति समय पृष्ठियों की अनंत गुणहानि द्वारा उदय की प्ररूपणा की अपेक्षा करता है। उदीर्णाय उदीर्णा यह चौथा क्रियाभेद है जो प्रयोगवश अपवर्तना करके उदीर्यमान स्थिति और अनुभाग की अपेक्षा करता है। यानी जो घटकर उदय में आता है ना उसको उदीर्णा कहते हैं। ठिदि खंडेन स्थिति कांडक यह पांचवा क्रियाभेद है जो स्थिति कांडक के आयाम की अपेक्षा करता है। पहले स्थिति कांडक के लिए जितना काल लगा था ना उसको स्थिति घात कहा था और यहाँ कांडक यानी कांडक के आयाम की बात है, किंतु स्थिति घात संज्ञक प्रथम क्रियाभेद के साथ इसका पुनरुक्तपना नहीं प्राप्त होता क्योंकि उसका संबंध स्थिति घात के काल विशेष को सूचित करता है। अनुभागेन अनुभाग यह छठा क्रियाभेद है जो कृष्टिगत अनुभाग को कृष्टिगत अनुभाग की प्रति समय होने वाली अपवर्तना के विधान की अपेक्षा करता है। यानी अनुभाग क्या हो रहा है तो प्रति समय अनंत गुना हानि हो रही है उसमें अनुभाग में पृष्टिगत अनुभाग, क्योंकि संज्वलन मुनि के अनुभाग का प्रकृत स्थान में कांडक घात संभव नहीं है। ठिदि संत कम्मेन स्थिति सत्कर्म यह सातवां क्रियाभेद है जो कृष्टि वेदक के सब संधियों में घात करने से शेष रहे स्थिति सत्कर्म के प्रमाण के निर्देश की अपेक्षा करता है, परंतु इसका ये अपने प्रश्न का उत्तर आया दूसरे क्रियाभेद के निर्देश के साथ पुनरुक्तपना नहीं होता क्योंकि कृष्टि वेदक के प्रथम समय में घात विशेष को नहीं प्राप्त हुए स्थिति सत्कर्म के प्रमाण के निश्चय करने में वह प्रतिबद्ध होता है। क्या कहते हैं, पृष्टि वेदक के प्रथम समय में घात विशेष को नहीं प्राप्त हुए स्थिति सकमे के प्रमाण के निश्चय करने में वह प्रतिबद्ध है। जो घात नहीं हुआ उसकी यानी विशिष्ट अलग अलग पोजीशन पर वो कितना स्थिति सत्कर्म है वो बताते हैं। पहले भी बताया था उन्होंने, वो केवल स्थिति सत्कर्म का प्रमाण है, कितना है इतना बताया था। अब कहते घात करने के बाद कितना कितना कहां कहां पर बचा है उसको यहां कहें, अथवा इसके स्थान में स्थिति संकमेन पद से गृहित, क्या कहा वहां स्थिति सत्कर्म के बदले स्थिति संकमेन चाहिए, स्वयं बता रहे स्थिति संक्रमीय सातवा क्रियावेद कहना चाहिए, क्योंकि इसे स्वीकार करने पर कोई विरोध नहीं आता। यहां स्थिति संक्रमीय होना चाहिए था, और यदि स्थिति सत्कर्म लेते हैं तो अलग अलग एक कृष्टि वेदक से दूसरी कृष्टि वेदक शुरू होने वाला या उसका अंतिम समय है, अलग अलग पोजीशन पर स्थिति सत्कर्म कितना है उसकी बात यहां बताएंगे। अनुभाग संतकमेन पद से गृहित अनुभाग सत्कर्म, यह आठवां क्रिया भेद है जो चार संगलनों के अनुभाग सत्कर्म का निर्देश करने में प्रतिबद्ध है। यहाँ पर प्रथम समयवर्ती कृष्टि वेदक के चार संगलनों के अनुभाग सत्कर्म की जो प्ररूपना विधि कही है वह पूरी जाननी चाहिए। अब उसके बाद बंध, बंधेन इस पद द्वारा बंध ऐसा कहने पर उसके आगे के पेज 40 पे उससे कृष्टि वेदक के सब संधियों में स्थितिबंध और अनुभाग बंध के प्रमाण के निश्चय करने में यह नौवा क्रिया भेद प्रतिबद्ध है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। बंध परिहानी इस पद द्वारा बंध परिहानी ऐसा कहने पर स्थितिबंध की परिहानी और अनुभाग बंध की परिहानी के प्रमाण के निश्चय करने में यह दसवां क्रिया भेद प्रतिबद्ध है ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिए। यानी स्थितिबंध और अनुभाग बंध परिहानी यानी विशेष घटता चला जाता है उसकी बात है। जहाँ अनुभाग बंध घटता है वो अशुभ प्रकृतियों में ही समझना है। यहाँ तो संज्वलनों की बात चल रही थी उसी की बात। इस प्रकार इन 10 क्रिया भेदों के द्वारा इस 10वीं मूल गाथा में मोहिनी कर्म की प्ररूपना प्रतिबद्ध है। इस प्रकार यहाँ पर मूल गाथा सूत्र का यह समुच्चय रूप अर्थ जानना और इस प्रकार की संपूर्ण प्ररूपना पहले ही विस्तार के साथ कहे आए हैं, इसलिए उसका पुनः विस्तार नहीं करते, क्योंकि प्रकाशित कथन के पुनः प्रकाशन करने में कोई फल नहीं दिखाई देता। अब शेष ज्ञानावरणादि कर्मों की भी इन्हीं क्रियाभेदों के द्वारा यथासंभव गवेषणा कर लेनी चाहिए, इस बात का ज्ञान कराते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। उन्होंने बताया मोहिनी में भी और अन्य कर्मों में भी क्या क्या होता है। अब कहते शेषाणी कम्माणी एदेहिम विचारेहिम अनुभगीय वाणी, शेष कर्मों की भी इन्हीं क्रिया भेदों के द्वारा मार्गणा कर लेनी चाहिए, उनको भी क्या क्या होता है वो ढूंढ निकालना चाहिए, खोजना चाहिए। मूल गाथा के उत्तरार्ध से संबंध रखने वाला यह विभाषा सूत्र गतार्थ हुआ, इसमें कुछ भी व्याख्यान करने योग्य नहीं है। इस प्रकार इस संपूर्ण मार्गणा का विस्तार सहित अनुसंधान कर लेने पर उसके बाद 11वीं मूल गाथा समाप्त होती है। इस प्रकार इस बात का ज्ञान कराने के लिए उपसंहार वचन को कहते हैं। उक्त विषयों की मार्गणा कर लेने पर 11वीं मूल गाथा समाप्त होती है। यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार ग्यारहवीं मूल गाथा की विभाषा करके समाप्त होने पर उसके बाद पृष्ठियों से संबंध रखने वाली ग्यारह मूल गाथाओं के अर्थ का विशेष व्याख्यान समाप्त होता है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए उपसंहार वचन को कहते हैं। वो तो आठ नौ गाथाएं बहुत विस्तार से चली थी, ये जल्दी एकारस होंती किट्टी इति पदम समत्तम। एकारस होंती किट्टी अर्थात पृष्ठियों के विषय में ग्यारह मूल गाथाएं हैं, यह पद समाप्त होता है। विशेषण प्रकृत में विभाषा सहित ग्यारहवीं मूल गाथा के गाथा को विभाषा के साथ टीका द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसमें आए हुए विचार पद का अर्थ क्रिया भेद है। हम जो शुक्ल ध्यान में देखते हैं ना विचार, वो तो पलटने को कहा था। वे विचार स्थान या क्रियाभेद सब मिलाकर दस कहे गए हैं। उनके नाम है स्थितिघात, स्थिति सत्कर्म, उदय, उदीर्णा, स्थिति कांडक, अनुभाग घात, स्थिति सत्कर्म, अनुभाग सत्कर्म, बंध और बंध परिहानी। इन दस विचारों में से स्थितिघात पद द्वारा स्थितिघात विषयक काल का ग्रहण किया गया है। पहला जो आया ना स्थितिघात, तो स्थितिघात विषयक काल, और स्थिति सत्कर्म द्वारा इस कृष्टि वेदक शपक के स्थिति विषयक सत्कर्म के प्रमाण का ज्ञान कराया गया। उदय पद द्वारा उक्त जीव के उदय में प्रति समय संज्वलन मोहनी की कृष्टियों में अनंत गुणी हानि होती रहती है, यह स्पष्ट किया गया है। उदीर्णा पद द्वारा बुद्धिपूर्वक उपयोग के स्वभावभूत आत्मा के सन्मुख रहने पर अपकर्षण होकर संज्वलन मोहनी की स्थिति और अनुभाग की जो उदीर्णा होती है उसकी प्ररूपणा की गई है। यानी यहाँ उदीर्णा यानी अपकर्षण रूप उदीर्णा होकर अपकर्षण होकर उदयावली में द्रव्य दिया जाता है, उसको उदीर्णा कहते हैं। हमने देखा असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा होती है, ऑलरेडी वहां तो है ही है, और ऊपर से नीचे आकर जुड़ने वाले असंख्यात समय प्रबद्ध होते। स्थिति कांडक पद द्वारा उक्त क्षपक जीव के स्थिति कांडक के आयाम का निर्देश किया गया है। यानी एट ए टाइम कितने स्थिति का खंडन होता है एक अंतर्मूर्त में। अंतर्मूर्त तो ऊपर हो तो उसका काल बताया था स्थिति घात में, और यहाँ पर कितने का घात होता है उसको कितना काल लगता है वो स्थिति घात में लिया पहले नंबर पर, और यहाँ पर आयाम को लिया। पहले जो स्थिति घात कहे आए हैं उसमें कितना काल लगता है इसका विचार किया गया है, और स्थिति कांडक में उसके आयाम का विचार किया गया है। इसलिए इन दोनों के कथन में अंतर है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अनुभाग घात इस पद द्वारा उक्त जीव के संज्वलन चतुष्क के अनुभाग की प्रति समय अपवर्तना होती रहती है। पहले जो कांडक घात होते हैं यहाँ कांडक घात नहीं है, बस प्रति समय का घात, यह स्पष्ट किया गया है। क्योंकि इस जीव के संज्वलन चतुष्क का अनुभाग पृष्टिगत हो जाता है।
तो ये कांडक घात जो हमने कांग्रेस वाले स्थान में देखे थे वो ये पुष्टिकरण के पहले समय से बंद हो जाएंगे।
क्या
नवे गुण स्थान में कांडक घात होते थे?
हाँ होते थे ना। हाँ
ये पुष्टिकरण के पहले समय से ये कांडक घात बंद हो जाएगा, अनुसमय अपवर्तना था।
पुष्टिकरण के साथ लिया था क्या क्या वेदक के था, मुझे ये पक्का याद नहीं आ रहा। पुष्टिकरण पुष्टि वेदक में लिया होगा शायद,
पुष्टि वेदक से कांडकात में
लिया। स्थिति सत्कर्म पद द्वारा पृष्ठी वेदक के चारों संज्वलनों की बारह संग्रह कुष्ठियों संबंधी जो ग्यारह संधियां संधियां है ना, उन संधियों में घात होने से जो स्थिति सत्कर्म शेष रहता है, हमने कैसे देखा प्रथम संग्रह कुष्ठिका वेदक का अंतिम समय, द्वितीय का अंतिम समय, तृतीय, इस तरह से उनके प्रमाण का निश्चय कराया गया है। किंतु यह दूसरे क्रियाभेद स्थिति सत्कर्म से अत्यंत भिन्न है। दूसरे नंबर पर भी स्थिति सत्कर्म कहा था, अब यहाँ पर भी स्थिति सत्कर्म कह रहे हैं सातवें नंबर पर, क्योंकि वो कृष्टि वेदक के प्रथम समय में जो स्थिति सत्कर्म होता है उसके प्रमाण का निश्चय कराता है। सेकंड नंबर पर जो है वो कृष्टि वेदक का पहला समय है, और यहाँ जो बताए वो हर एक संधि में कितना होता है उसकी बात। और यह स्थिति सत्कर्म सब संधियों में शेष रही स्थिति सत्कर्म के प्रमाण का निश्चय कराता है। इसलिए इन दोनों में अंतर है। यदि कहा जाए कि स्थिति सत्कर्म पद से दोनों का ग्रहण हो जाएगा, इसलिए इनका अलग अलग निर्देश करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, इस प्रकार इसी बात को ध्यान में रखकर स्थिति संक्रमेण पद द्वारा स्थिति संक्रम रूप इस दूसरे अभिप्राय का निर्देश किया गया, यानी उसमें स्थिति संक्रम ले लेना इसका, इसे स्वीकार कर लेने से उक्त विरोध की स्थिति समाप्त हो जाती। अनुभाग सत्कर्म इस पद द्वारा पृष्टि वेदक के प्रथम समय में चारों संग्रहणों का जो अनुभाग सत्कर्म सत्कर्म की बात है होता है वह सूचित किया गया। बंध पद द्वारा पृष्टि वेदक के संपूर्ण स्थितियों में संधियों में संपूर्ण संधियों में स्थिति बंध और अनुभाग बंध के प्रमाण का निश्चय कराया गया कि इस संधि में इन दोनों का प्रमाण इतना होता है और इस संधि में इतना होता है। इस रूप में विशेष ज्ञान कराया गया है। बंध परिहानी यह अंतिम क्रियाभेद है, इस द्वारा उक्त क्षपक के स्थितिबंध और अनुभाग बंध की किस स्थान में कितनी हानि होती है, इस प्रकार उनके प्रमाण का निश्चय कराया गया है। यानी पहले स्थितिबंध होता था उसमें कितनी कटौती होगी, इस तरह से। इस प्रकार ये दस विचारणीय क्रियाभेद हैं, जिनका विशेष व्याख्यान इसी ग्यारहवीं मूल गाथा के अंतर्गत किया गया। किंतु इन दस क्रियाभेदों का विशेष व्याख्यान उस स्थान पर पहले ही किया जा चुका है, जब हमने पंद्रहवीं पुस्तक पढ़ी थी उसमें विस्तार से बताया था, इसलिए यहाँ नहीं किया गया ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इस प्रकार इस मूल सूत्र गाथा का उपसंहार करके अब कृष्टियों के क्षपणा के काल से संबंध रखने वाली चार मूल गाथाओं की भाष्य गाथाओं के साथ यथावसर प्राप्त अर्थ की विभाषा करते हुए आगे के विभाषा ग्रंथ को आरंभ करते हैं। एतो चत्तारी खवणायति, अब इससे आगे क्षपणा संबंधी चार मूल गाथाओं का निर्देश करते हैं। अब इस संबंध गाथा के अवयवभूत बीज पद का अवलंबन करके क्षपणा संबंधी चार मूल गाथाओं के अर्थ की क्रमानुसार विभाषा करेंगे, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। उनमें से सर्वप्रथम प्रथम मूल गाथा की समुत्कीर्तना करते हुए इस सूत्र को कहते हैं। 161 लिखा है नोट, किम वेदेन तो है क्या वो? जरा देखना 42 पृष्ठ वेदेन तो बराबर किम वेदेन तो किट्टिम हवेदि किम चा विसंचोहंतो वा संचोहणमुदयेन च अनुपूवम् अननुपूवम् वा। यह क्षपक पृष्ठियों को क्या वेदन करता हुआ क्षय करता है या क्या संक्रमण करता हुआ क्षय करता है या क्या संक्रमण और वेदन दोनों करता हुआ क्षय करता है या क्या अनुपूर्वी से क्षय करता है या क्या अनुपूर्वी के बिना क्षय करता है, ये प्रश्न पूछे गए सब। प्रश्न चिन्ह डालो। यह प्रथम मूल गाथा 12 संग्रह पृष्ठियों की क्षपणा करता हुआ किस प्रकार क्षपणा करता है, क्या वेदन करता करना हुआ जाए करता हुआ क्षपणा करता है या क्या वेदन न करके संक्रमण करता हुआ ही क्षपणा करता है या वेदन करता हुआ और क्षपणा करता हुआ इन दोनों प्रकारों से क्षपणा करता है या परिपाटी क्रम से क्षपणा करता है या परिपाटी क्रम को छोड़कर क्षपणा करता है, इस प्रकार इस विधि से पूछी गई पृच्छाओं के निर्णय का विधान करने के लिए अवतरित हुई है। परंतु इस मूल गाथा के अवयवों के अर्थ का स्पष्टीकरण और पदों का संबंध सुगम है। अब इस मूल गाथा के पृच्छा मात्र से निर्दिष्ट किए गए इन अर्थों का निर्णय करने पर उस विषय में एक भाष्य गाथा जाननी चाहिए, इस प्रकार इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह सूत्र कहते हैं। एदिस से एक का भाष्य गाथा, इस मूल गाथा की एक भाष्य गाथा है, यह सूत्र सुगम है। तम जहां वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। अब ये भाष्य गाथा यहाँ बता रहे हैं। परमं विदियं तदियं वेदेन्तो वा विसंचुहन्तो वा चरिमं वेदयमानो कवेदि उभयेन सेसावो। क्रोध संज्वलन की प्रथम द्वितीय और तृतीय संग्रह पृष्ठ स के ऊपर बिंदु। संग्रह पृष्ठि को वेदन करता हुआ और संक्रमण करता हुआ भी क्षय करता है, यानी क्रोध की तीनों संग्रह पृष्ठियों का वेदन भी चलता है और संक्रमण भी चलता है। अंतिम 12वीं संग्रह पृष्ठि को वेदन करता हुआ ही क्षय करता है। वही तो चरिमं वेदयमानो खवेदि। परमं विदियं तदियं वेदेन्तो वा विसंचुहन्तो वा चरिमं वेदयमानो खवेदि। अच्छा, उसका संक्रमण नहीं होता, इतनी बात
बता।
सूक्ष्म पृष्टि रूप होता है। अंतिम 12वीं संग्रह पृष्टि को वेदन करता हुआ एक क्षय करता है तथा शेष सब संग्रह पृष्टियों को दोनों प्रकार से क्षय करते। इस भाष्य गाथा द्वारा पूर्वोक्त अशेष पृच्छाओं के निर्णय का विधान किया गया है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। शंका, वह कैसे? परमं विदियं तदियं ऐसा कहने पर क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह पृष्ठि, दूसरी संग्रह पृष्ठि और तीसरी संग्रह पृष्ठि को वेदन करता हुआ अथवा संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, ऐसा यहाँ पदों का अर्थ के साथ संबंध है। चरिमं वेदयमानो ऐसा कहने पर अंतिम संग्रह पृष्ठि को एक की है, अंतिम संग्रह पृष्ठि को नियम पूर्वक वेदन करता हुआ ही क्षय करता है, संक्रमण करता हुआ क्षय नहीं करता, यह इस सूत्र के अर्थ के साथ संबंध है। अंतिम संग्रह पृष्ठि को ऊपर है ना, पृष्ठि को वेदन करता हुआ सेकंड लाइन, इस भाष्य गाथा में चरिम संघ किट्टी मैसा कहने पर सूक्ष्म सांप्राय कृष्टि को ग्रहण करना चाहिए, तीसरी नहीं, ये तीसरी संग्रह कृष्टि की बात करते हैं, लोक की तीसरी की, उसको अंतिम नहीं कहा, जो सूक्ष्म रूप हो गई है उसको अंतिम कहा। हम जल्दी और निर्णय तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि बादल संग्रह कृष्टि का अपने स्वरूप से उदय होना संभव नहीं है। क्या कहा?
तो बादल संग्रह कृष्टि का उदय नहीं है तो संग्रह में नहीं सक, समझ सकते हैं ना, इसीलिए क्योंकि वो सूक्ष्म रूप उसका संक्रमण होता है। अच्छा, संक्रमण किया
यहाँ तो वेदन करता हुआ करते कि बिना वेदन करता हुआ, ऐसा ऐसा प्रश्न है, उसका संक्रमण होता है कि नहीं, ये नहीं पूछा हमने।
और संक्रमण तो यहाँ पे सपना की अपेक्षा है ना?
हाँ, संक्रमण सपना को ही तो नष्ट होने को ही संक्रमण, क्योंकि बादल संग्रह कृष्टि का कौन सी, ये बारहवीं बादल कृष्टि संग्रह कृष्टि है ना, उसका अपने स्वरूप से उदय होना संभव नहीं है। उभय न शेषा वैसा कहने पर सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि को छोड़कर शेष संपूर्ण संग्रह कृष्टियों का दो प्रकार से क्षय करता है, अर्थात संक्रमण करता हुआ और वेदन करता हुआ क्षय करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य। अब इस भाषा गाथा के इस प्रकार के अर्थ की विभाषा करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। ये ख्याल में आई बात, लोक की प्रथम और द्वितीय तक भी वेदन भी चल रहा था, संक्रमण भी चल रहा था, तृतीय का तो नहीं होगा, वो तो संक्रमित होकर सूक्ष्म पुष्टि रूप से वेदन, तो उसको अंतिम पुष्टि कहा, तो उसका वेदन होता है, उसका संक्रमण होने के लिए अभी कोई दूसरा कुछ बचा नहीं है। हाँ, विहासा, अब इस भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है, तम जहा वह जैसे, यह सूत्र सुगम है, अब उसका सूत्र बताएंगे। 45 पर आए, परमम कोहस्य किट्टिम वेदेन्तो वा खवेदी अथवा अवेदेन्तो संचुहंतो। संजुलन क्रोध की प्रथम संग्रह पुष्टि का वेदन करता हुआ क्षय करता है, अथवा वेदन न करके संक्रमण करता हुआ क्षय करता है। क्रोध से जो चढ़ता है वो क्रोध की बनाएगा संग्रह पुष्टि, जो मान के साथ चढ़ता है वो क्या करेगा, वो तो केवल संक्रमण करेगा। देखो, क्रोध संज्वलन क्रोध की जो प्रथम संग्रह पुष्टि है उसे वेदन करता हुआ क्षय करता है, ऐसा कहने पर वेदन करता हुआ और पर प्रकृति संक्रमण के द्वारा संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। क्योंकि इन दोनों प्रकारों से उसकी क्षपणा उपलब्ध होती है। अच्छा अच्छा, ऐसा यानी जो खिर रहे ना उदय रूप, उसको वेदन करता हुआ क्षय का, ये यह नहीं, जिसका उदय नहीं उसकी बात नहीं हो रही है, जिसका उदय है उसी में दो बात बताए कि उन्होंने क्या किया, क्रोध कृष्टि का प्रथम संग्रह कृष्टि का नीचे प्रथम स्थिति बनाई और उसमें तो गुणश्रेणी की रचना हुई और असंख्यात समय प्रबद्ध वहां उदय रूप होकर निकल जा रहे क्षय हो रहे और बाकी ऊपर जो पड़े हैं वो अन्य रूप से टर्न होकर नष्ट हो रहे, तो दोनों प्रकार से हो रहे, जो उदय रूप होकर निकल जाएंगे उसको कहेंगे उदय होकर क्षपणा हो रही है और जो संक्रमित होकर अन्य रूप होते हैं उसको कहेंगे संक्रमित होकर क्षपणा हो रही है। क्योंकि इन दोनों प्रकार से उसकी क्षपणा उपलब्ध होती है, अथवा अवेदन तो ऐसा कहने पर वेदक पने के बिना पर प्रकृति संक्रमण के द्वारा संक्रमण करता हुआ ही कितने ही काल तक विवक्षित क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि को क्षय करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब किस अवस्था विशेष में विद्यमान यह क्षपक क्रोध की प्रथम संग्रह पुष्टि को वेदन करता हुआ क्षय करता है तथा किस दूसरी अवस्था में परप्रकृति रूप से संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है, इस प्रकार इस अर्थ विशेष को स्पष्ट करने के लिए आगे के दो सूत्रों को कहते हैं। जे वे आवलिय बंधा दुसमयुना ते अवेदेंतो खवेदी केवलम संचुहंतो चेव। जो दो समय कम दो आवली प्रमाण नवक बंध निषेक हैं भाई, उनको वेदन न करते हुए ही क्षय करता है, क्योंकि उसका उदय मिल गया। अभी उदय द्वितीय संग्रह कृष्टि का चल रहा है, उनको केवल संक्रमण करके ही नष्ट करता है, क्षय करता है, मात्र संक्रमण होता है। अपने वेदक काल के क्षीण हो जाने पर यानी समाप्त हो जाने पर उसके बाद दो समय कम दो आवली प्रमाण नवक बंध संबंधी पृष्ठियों का वेदन न करते हुए संक्रमण द्वारा ही क्षय देखा जाता है। विशेषार्थ कितना है? इतना ही। अच्छा, इसको पढ़ें। प्रथमादि ग्यारह, ये विशेषार्थ पढ़ रहे। प्रथमादि ग्यारह संग्रह पृष्ठियों का वेदक काल समाप्त होने पर द्वितीय आदि संग्रह पृष्ठियों का काल जब प्रारंभ होता है, यानी हर एक प्रथम द्वितीय द्वितीय तृतीय तृतीय और मान इस सर हर बार समझना है सर। आगे आगे वाला जब वेदक काल शुरू होता है तब उनके काल में प्रथमादि संग्रह पृष्ठियों के काल में बंध को प्राप्त हुए दो समय कम दो आवली प्रमाण नवक बंध पर प्रकृति संक्रम द्वारा वेदे जाते हैं, ऐसा नियम है। मात्र इसीलिए उनकी संक्रमण होकर ही निर्जरा होती है, उक्त सूत्र में यह निर्देश किया गया। अब आगे का सूत्र कल पढ़ेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी नस्तक नऊ सदा।